नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है। तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
कश्मीर का
राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।